Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kenopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmananda Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मनिराकुर्याम् मामा ब्रह्मनिराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सुधर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद का हम लोग विचार कर रहे हैं। चार खंडात्मक इस उपनिषद के दो खंडों के द्वारा परमात्मा के परमार्थ स्वरूप का वर्णन हुआ। ब्रह्म का जो परमार्थ स्वरूप है वह निर्गुण निराकार है, निरुपाधिक है, और उसे ईदंतया नहीं जाना जा सकता। उसका जब कभी बोध होगा तो आत्मरूप से ही बोध होगा, और जिसको परमात्मा का परमार्थ स्वरूप अनुभव में आता है तो वह विद्वान परमात्मा को विदित नहीं समझता, यह ऐसा नहीं समझता। इसलिए श्रुति ने कहा कि अविज्ञातम विजानतान, विद्वान के लिए तो परमात्मा अविज्ञात है, का मतलब ईदंतया ज्ञात नहीं है। जो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञाता है वह परमात्मा को ईदंतया ज्ञात नहीं समझता, मैं के रूप में उसका अनुभव करता है। और यस्याम ये अभिज्ञातम विजानताम ये सुना तो जो मंदबुद्धि लोग हैं उनके बुद्धि में एक शंका हुई कि जो है वह उपलब्ध होता है, तो अस्ति चेत उपलब्धव्यम, यदि परमात्मा का स्वरूप है तब तो उपलब्ध होना चाहिए। जगत में जो विद्यमान वस्तु है वह अनुभव में आती है। सामने कुछ ग्रंथ रखे हैं टेबल पर तो दिखते हैं, डेस्क में रखे हुए ग्रंथ तो माना जाता है उनका अस्तित्व है। अर्थात जो विद्यमान वस्तु होगी वह उपलब्ध होती है। और ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म अभिज्ञात है यानी अनुपलब्ध है। तो जो अनुपलब्ध है उसे तो कहा जाता है असत ही अनुपलब्ध होता है, जैसे मनुष्य के सिंह है नहीं इसलिए उपलब्ध नहीं होता है, आकाश का पुष्प है नहीं इसलिए उपलब्ध नहीं होता। ऐसे ब्रह्म भी कह रहे हैं कि विद्वान कौन है जिसे ब्रह्म उपलब्ध नहीं हो रहा है, अभिज्ञात है वह विद्वान है, का अर्थ है कि ब्रह्म होता तो उपलब्ध होता, विज्ञात होता तो है, विज्ञात नहीं हो रहा है इसका अर्थ है कि है नहीं, आकाश पुष्पादि के तरह अत्यंत असत है। इस प्रकार अनिश्वरवादियों की आशंका का, मंदबुद्धि व्यक्तियों की आशंका का समाधान करने के लिए भी यह आख्यायिका है। इससे बताया जा रहा है कि परमात्मा नहीं है इसलिए ईदंतया अनुपलब्ध हो रहा है ऐसी बात नहीं, वह है और उसे ईदंतया उपलब्ध इसलिए नहीं किया जा सकता, उसका वास्तविक स्वरूप कि वह आत्मा है जानने वाले का भी। तो जानने वाला कभी अपने आप को ईदं के रूप में नहीं देखता, यदि इदम के रूप में देखेगा तो अनात्मा हो जाएगा। और परमात्मा का एक रूप जो सोपाधिक है, जो उपास्य है, वो तो ईदंतया ज्ञात हो सकता है, दृष्टिगोचर भी हो सकता है सोपाधिक रूप। और उस सोपाधिक रूप वाले परमात्मा को, दृष्टिगोचर होने वाले परमात्मा को श्रुति बता रही है, क्योंकि पूर्व में परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने के उद्देश्य से परमात्मा के उपास्य स्वरूप का निषेध कर दिया था, नेदम यदिदम उपासते से। तो कोई ये न समझे कि उपास्य ब्रह्म ही नहीं, इसलिए भी तृतीय खंड से आख्यायिका के माध्यम से श्रुति ब्रह्म का एक ईदंतया दृष्टिगोचर होने वाला भी स्वरूप है, वह सोपाधिक स्वरूप है, उसे बता रही है। और जब उसे मंदबुद्धि ग्रहण कर लेता है तो उपास्य ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म के परमार्थ स्वरूप का अनुभव करने की योग्यता जब बुद्धि में आती है तो ब्रह्म के अनुग्रह से ही ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का भी बोध हो जाता है। इसे ध्यान में रख करके श्रुति भगवती जो उत्तम अधिकारी हैं उनके लिए तो ब्रह्म के परमार्थ स्वरूप का वर्णन दो खंडों में कर चुकी हैं, लेकिन श्रुति का तो अभिप्राय है कि जो परमात्मा के परमार्थ स्वरूप को जानने की योग्यता नहीं रखते वे उस स्वरूप को जानने की योग्यता प्राप्त करें और उस योग्यता प्राप्ति का उपाय भी श्रुति बता रही है। और जब परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने की योग्यता आ जाएगी तो परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को भी अपने आप ही जान लेंगे। इस अभिप्राय से यहां परमात्मा के यथार्थ ज्ञान की योग्यता जिन साधनों से आती है उन साधनों का भी निरूपण आख्यायिका के माध्यम से श्रुति कर रही है। तो आख्यायिका के अनुसार देवासुर संग्राम हुआ और ब्रह्म ने ही सत्य संकल्प ब्रह्म ने उस संग्राम का परिणाम विजय देवता के पक्ष में जाए असुरों का पराजय हो जाए इत्याकारक संकल्प किया। ये संकल्प करने वाला ब्रह्म है सगुण निराकार ब्रह्म। और जैसे ही ब्रह्म ने संकल्प किया तो सत्य संकल्प होने से जिसके एक संकल्प मात्र से प्रलय के समय पर समस्त स्थूल और सूक्ष्म कार्यों का क्षणों में ही प्रकृति में विलय हो जाता है। उस ब्रह्म के संकल्प से एक छोटे से देवासुर संग्राम में असुरों का पराजय होना कोई नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सत्य संकल्प है। और युद्ध का परिणाम जो होना था हो गया, देवताओं की विजय हो गई, असुर पराजित हो गए। और जिस की ये विजय हुई, जिसने संकल्प किया ब्रह्म ने, उसी की मानी जाएगी ये विजय। लेकिन देवता जैसे ब्रह्म ने संकल्प किया विजय आई देवता के पक्ष में, तो देवताओं को उससे महत्व प्राप्त हुआ, देवताओं के प्रति आदर बुद्धि हुई और देवताओं का स्वयं में भी एक अभिमान बढ़ गया। और देवता अपने कार्यक्रम संघात में ही आत्माभिमान रूपी अध्यास भ्रम को स्वीकार करके ये समझने लगे कि हम जो देव यौनिस्थ इंद्रादि रूप हैं, इनसे अतिरिक्त कोई दूसरा इस युद्ध का परिणाम निकालने वाला नहीं है, हमारे ही अपने स्वयं के पुरुषार्थ से इस युद्ध में असुर पराजित हुए और हमारी विजय हुई, इसलिए हम ही समर्थ हैं और हम ही विजयी हैं। इस प्रकार का मिथ्या अभिमान देवताओं को हुआ। ये इस प्रकार के मिथ्या अभिमान को देवताओं के निवृत्त करने के उद्देश्य से देवताओं पर अनुग्रह करते हुए ब्रह्म ने, यानी सगुण ब्रह्म ने देवताओं के श्रेय की कामना से देवताओं के सामने एक अपनी उपाधिभूत माया शक्ति के द्वारा निर्मित जो अत्यंत अद्भुत शरीर एक रूप है, जिसे यहां यक्ष कहा जा रहा है, यक्ष कहते पूज्यतम को। देवताओं का शरीर भी यद्यपि दिव्य होता है, लेकिन उन दिव्य शरीरों से भी दिव्यतम रूप से ब्रह्म अपनी माया शक्ति से देवताओं के सामने प्रकट हुए, इतने दूरी पर कि आंख से वे देख सकें। और आपस में देवता ये विचार कर ही रहे थे, युद्ध हुआ था और बड़े अभिमान के साथ कि हमने कैसे असुरों को पराजित किया और कैसा विजय प्राप्त किया। और उतने में एक तेजस्वी अत्यंत अद्भुत कभी न देखा हुआ रूप देवताओं ने देखा और देख करके कुछ अंदर में भय भी हुआ। और इस यक्ष रूप का विशेष स्वरूप जानने की इच्छा से देवताओं ने अग्नि को नियुक्त किया कि आप यक्ष के पास जाकर के परिचय प्राप्त करके आइए कि यक्ष कौन है। यक्ष ये सामने जो है उसका वो दिख रहा है हमें, आपको भी हमको भी सबको दिख रहा है वो स्वरूप, वो कौन है। अग्नि ने सभी देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करके जो देवताओं ने कार्य करने की प्रार्थना की उस कार्य के लिए अभिमान के साथ ही अग्नि सगुण साकार रूप से प्रकट हुए ब्रह्म के पास आए। अभिमानी व्यक्ति अपने अभिमान में जो श्रेष्ठों के प्रति व्यवहार करना चाहिए उस व्यवहार को भी भूल जाता है। तो अग्नि को अभिमान है, मैं तो अग्रणी हूं, जातवेदा हूं, और इस अभिमान के कारण यक्ष के पास आकर के भी न तो नमस्कार किया और न तो कुछ पूछा, कुछ भी व्यवहार नहीं किया। सामने आकर के बिल्कुल जैसे एक प्रकार से सूखा पेड़ खड़ा रहता है ऐसे खड़ा रह गया। यक्ष ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की कि शायद कुछ पूछेगा, लेकिन ब्रह्म के सामने जैसे ही अभिमान के साथ अग्नि खड़ा है तो अग्नि की बुद्धि एक प्रकार से कुंठित हो गई। पूछना तो चाहता है अंदर से कि ये कौन है, आप कौन है, परिचय दीजिए आपका, लेकिन पूर्व खंडों में देखा कि वाक का भी वाक है, बोलने का सामर्थ्य प्रदान करने वाला है, और ब्रह्म ने अग्नि के वाक को कुछ पूछने की बोलने की सामर्थ्य प्रदान ही नहीं की एक प्रकार से। तो कुंठित होकर के अग्नि उस सगुण साकार रूप से प्रकट हुए, यक्ष रूप से प्रकट हुए ब्रह्म के सामने खड़ा है। तो अग्नि से ब्रह्म ने ही फिर स्वयं प्रश्न किया कि कोशी आप कौन है। तो इस समय भी अग्नि का अभिमान शांत नहीं हुआ है। अग्नि ने कहा कि मैं अग्नि हूं, मुझे अग्नि इस नाम से लोग कहते हैं। अग्नि का अर्थ होता है अग्रणी, सबके आगे जाने वाला, और मैं जातवेदा हूं, यानी सब कार्य मात्र को जानने वाला हूं। तो ये उत्तर भी अग्नि के मुख से ब्रह्म ने देखा कि अभिमान को ही प्रकट करने वाला उत्तर है। और ये अभिमान ब्रह्म ज्ञान में सबसे बड़ा बाधक है। बिल्कुल ब्रह्म सामने है और ब्रह्म को जानने के लिए ही अग्नि आया भी है, लेकिन ये ब्रह्म जो है दीवाल का क्या, अग्नि का जो अभिमान है वह एक प्रकार से दीवाल का काम कर रहा है। ब्रह्म सामने है, ब्रह्म के सामने अग्नि है, एक दूसरे के सामने होने पर भी ये अग्नि का जो स्वयं के कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रूपी भ्रम है, यह भ्रम जैसे दीवाल के उस पार खड़ा व्यक्ति हो तो उसको आप देख नहीं सकते क्योंकि दीवाल बीच में आवरक है, ऐसे अभिमान भी एक प्रकार से आवरक बनकर के सामने आया है, अहंकार। और इसी अहंकार के कारण अग्नि के सामने ब्रह्म होने पर भी अग्नि को समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए गीता के 13वें अध्याय में ज्ञेय स्वरूप का वर्णन करने से पहले भगवान ने ज्ञेय को जानने के कुछ साधन बताए हैं, ज्ञान के साधन, ब्रह्म ज्ञान के साधन। और ब्रह्म ज्ञान के साधनों में सबसे पहला साधन बताया है अमानित्वम। 20 साधन बताए वहां पर, अमानित्वम, अदम्भित्वम से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम यहां तक। तो ये सबसे पहला साधन है ब्रह्म ज्ञान का, अमानित्व। मानित्व का अर्थ है अभिमानित्व, अभिमान। और ये देखा जा रहा है कि अग्नि में अभिमान होने के कारण जिसको जानना चाहता है वह सामने होने पर भी ये अभिमान ब्रह्म की पहचान नहीं होने दे रहा है। तो फिर ब्रह्म ने ब्रह्म ज्ञान में प्रतिबंधक जो अभिमान है अग्नि का, इसे हटाने के उद्देश्य से, इस प्रतिबंधक को निवृत्त करने के उद्देश्य से अग्नि को पूछा कि तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम्। 5वें मंत्र में पूछा जा रहा है कि अग्रणी, सभी देवताओं में अग्रणी जो अग्नि तथा जात वेदा आप हो, यानी सर्वज्ञ कल्प हो, तो आप में क्या सामर्थ्य है। तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम्, क्या शक्ति है आपकी, थोड़ी शक्ति बता दो, शक्ति का परिचय करा दो। तो ब्रह्म ने जैसे ही अग्नि से प्रश्न पूछा तो अग्नि अपनी विशेषता, अपनी सामर्थ्य बताता है कि मैं जलाने वाला हूं। और मैं किसको जला सकता हूं, तो कहा कि संसार में जितनी भी दाह्य वस्तु हैं उन सबको जलाने का मेरे में सामर्थ्य है। ये कहा कि इदम सर्वम दहेयम यदिदम पृथ्व्याम इति। इस पृथ्वी शब्दित संसार में जो कुछ भी स्थावर जंगम आदि दाह्य वस्तु प्रतीत हो रही है उसे मैं जला करके भस्म कर सकता हूं, ये मेरे में सामर्थ्य है। तो यक्षरूपधारी ब्रह्म ने देखा कि अभी भी अग्नि का अभिमान शांत नहीं हुआ है, तो कहा यदि तुम सारे विश्व को ही जला सकते हो तो जलाने में अत्यंत सरल, अनायास जला सको, ऐसा ये छोटा सा तृण है, इसे जला दो। तो तस्मै तृणम् निदधो, यक्षरूपधारी ब्रह्मणे अभिमानी यानी दाहकत्व का अभिमान करने वाले अग्नि के सामने एक सूखा तृण रख दिया और रख करके कहा कि यदि तुम दाहकत्व का अभिमान करते हो, ये सोचते हो कि मैं जलाता हूं सबको, तो ये सूखा तृण है, इसको जला दो। और यदि न जला सको तो अपने दाहकत्व का, अपने सामर्थ्य का जो अभिमान है उसे त्याग दो। तो यही कहा कि एतद् दह इति, सामने तृण रख करके कहा कि इस तृण को जलाओ, और नहीं जला सको तो अभिमान को छोड़ दो। अग्नि का अभिमान बड़ा पुष्ट है। पहले तो अग्नि ने सोचा कि ये हमारे सामने जलाने के लिए क्या रख रहा है ये यक्ष, समझने में नहीं पा रहा है मेरी शक्ति कितनी है। लेकिन तब भी जब कहा है तो तो चलो अग्नि ने सोचा कि इस तृण को ऐसे ही जला दूं। तो उस तृण के पास अग्नि जाता है और जाकर के जलाने के लिए प्रयास करता है। तो कहा कि तद उपप्रेयाय, तद यानी वो जो रखा हुआ यक्ष के द्वारा तृण था, उस तृण के पास अग्नि गया और सर्वजवेन यानी जितनी शक्ति अग्नि में थी वो सारी शक्ति अग्नि ने उस तृण को जलाने के लिए प्रयोग में लाई। लेकिन कहते हैं तन न ससाक दग्धुम, अपने पास जितनी शक्ति थी उस सारी शक्ति का प्रयोग करने पर भी अग्नि यक्ष के द्वारा स्थापित उस तृण को जला नहीं पाया। जैसे रावण कैलाश पर्वत को ही उठा करके ले जा रहा था ना, और उठाया भी था हाथ से, यानी कैलाश पर्वत को भी उठाने का सामर्थ्य रावण के जिन भुजाओं में था, लेकिन अंगद के एक पैर को भी जब अंगद ने रखा और कहा कि इसको हिला दो तो नहीं हिला पाया। ऐसे ही अग्नि जिसमें सारे विश्व को जला करके भस्म करने की शक्ति है, उस अग्नि ने अपनी सारी शक्ति लगा करके यक्ष के द्वारा स्थापित किए हुए रखे हुए उस सूखे तृण को जलाने का प्रयास किया, नहीं जला पाया। क्योंकि अग्नि में जो दाहकत्व शक्ति है वह अग्नि की अपनी नहीं है। जैसे श्रोत्र इंद्रिय में शब्द ग्रहण की शक्ति श्रोत्र इंद्रिय की स्वयं की नहीं है, चंद्रमा में प्रकाश अपना निजी नहीं है, सूर्य से उसे प्रकाश मिलता है और सूर्य से प्रकाश पा करके अपने प्रकाश से वस्तु को प्रकाशित करता है चंद्रमा। ऐसे अग्नि आदि में दाहकत्व शक्ति इस चेतन के सामर्थ्य से है, चेतन से आती है और वही चेतन सामने है, उन्होंने संकल्प किया। जैसे पहले संकल्प किया था असुरों के पराजय का, देवताओं के विजय का, तो इसी ब्रह्म के संकल्प से देवताओं को विजय मिली थी, असुरों को पराजय मिली थी। उसी ब्रह्म ने संकल्प किया कि यह सुखा तृण अग्नि से अदाह्य हो, अग्नि से जल न सके, अग्नि इसे जला न पाए, इत्याकारक संकल्प जब ब्रह्म का हुआ तो ब्रह्म के संकल्प को मिथ्या करने की शक्ति और किसी में हो नहीं सकती, इसलिए अग्नि जला नहीं पाया। और ब्रह्म ने ऐसा संकल्प क्यों किया? इसलिए किया कि अग्नि को अग्नि के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान में प्रतिबंधक है अग्नि का यह अभिमान कि मैं सारे संसार को जला करके भस्म कर सकता हूं, इस सामर्थ्य से संपन्न हूं। इत्याकारक जो अग्नि का मिथ्या कार्यक्रम संघात में अभिमान था, इस मिथ्याभिमान के कारण ही तो ब्रह्म को नहीं जान पा रहा है। और वो भगवान दिखाना चाहते थे कि ये तो यानी ब्रह्म दिखाना चाह रहा है अग्नि को कि ये सामर्थ्य तुम्हारी अपनी है नहीं, इसलिए मिथ्या अभिमान से रहित हो जाओ और जिससे तुम सामर्थ्य पा रहे हो उसे पहचानो। ये तो अर्जुन को गीता 11वें अध्याय में गीता में भगवान कहते हैं ना, जब ईश्वर दर्शन कराया और देखा कि उस भगवान के विश्व स्वरूप के मुंह खुले हुए हैं और खुले हुए उस विकराल मुंह में सारी सेनाएं जाती जा रही हैं दुर्योधन आदि की, और वो दुर्योधन आदि ये सब जितने भी हैं भीष्मादि उनको भगवान ही मारते जा रहे हैं। और बाकी तो उपाधि भूत ये जो कठपुतलियां हैं शरीर आदि तत्त्व प्राणी, उन सब प्राणियों में अपना अपना कार्य करने की सामर्थ्य तो ब्रह्म की शक्ति से मिल रही है ना। कठपुतलियों का नाच दिखाने वाला नचाने वाला उन कठपुतलियों को, वो यद्यपि पर्दे के पीछे रहता है दिखता नहीं है, लेकिन कठपुतलियों में स्वयं नाचने की शक्ति नहीं है, वो धागों को जैसे जैसे खींचता है वैसी वैसी वो नाच दिखाती है कठपुतलियां। कठपुतलियां तो निमित्त मात्र है। ऐसे अर्जुन को भगवान ने कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये सब के सब तो मैंने ही पहले ही मारे हैं, मैं वह निहता मैंने ही पहले से इनको मार दिया है, लेकिन तुम श्रेय लेने के लिए निमित्त बन जाओ।